अध्याय संख्या 16, लेखन शिक्षण, संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि। बालक पहले पठन सीखें या लेखन, इसके विषय में शिक्षा शास्त्री एक मत नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षक फॉवेल के अनुसार बालक को पहले पढ़ना सिखाना चाहिए। जब बालक अक्षरों को ज्ञान पहचान कर पढ़ना सीख जाए, तब उसे लिखने की शिक्षा दी जाए। इससे लेखन निरर्थक क्रिया न होकर सार्थक क्रिया हो जाएगी। इसके विपरीत बाल मनोविज्ञान की पंडिता मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जब लेखन कार्य करते समय बालक का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण हो जाएगा, तो वह लिखित सामग्री को पढ़ने के लिए स्वभावतः उत्सुक हो उठेगा। ऐसा लगता है कि दोनों विद्वानों ने वर्णमाला की कठिनाई को समझकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। रोमन लिपि में यह दोष है कि उसमें लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। अक्षर का जो नाम है वही उसका उच्चारण नहीं है। रोमन लिपि में लिखते के हैं, किंतु के का उच्चारण का होता है। देवनागरी लिपि में ऐसी बात नहीं है, इसलिए देवनागरी लिपि का को तो प्रारंभ में भी सिखाया जा सकता है। इस दृष्टि से लेखन और पाठन साथ साथ चलने चाहिए, इनमें आगे और पीछे का प्रश्न नहीं है। संस्कृत भाषा को लोग बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और रोमन लिपियों में भी लिखते हैं, किंतु देवनागरी लिपि संस्कृत की मान्य लिपि है, और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्वान देवनागरी लिपि में ही संस्कृत को लिखना अधिक पसंद करते हैं। देवनागरी लिपि संसार की सर्वोत्तम लिपि है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। सुंदर हस्तलेख का महत्व। मुद्रण यंत्र के आविष्कार के पूर्व संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, और आज भी इन हस्तलिखित पांडुलिपियों को देखकर आश्चर्य होता है। उन पांडुलिपियों में अक्षरों की सुडौलता का पूरा ध्यान रखा गया है, और ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों के लेखक लेखन कला के पूर्व पारखी रहे थे। सुंदर लेखन सभी को अच्छा लगता है। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई सामग्री को बरबस पढ़ने का मन करता है, अतः छात्रों को सुंदर लेखन की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। असुंदर हस्तलेख के कारण। आजकल छात्रों के हस्तलेख बड़े बद्धे होते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो आजकल छात्र प्रारंभ से ही फाउंटेन पेन का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे उनका लेख खराब हो जाता है। दूसरे, छात्रों को लिखते समय कलम किस प्रकार पकड़नी चाहिए या भी नहीं मालूम होता। तीसरे, बालक को लिखते समय किस प्रकार बैठना चाहिए इसका कोई विचार नहीं रहता। गलत ढंग से बैठने पर या तिरछे बैठने पर अक्षर टेढ़े हो जाते हैं। चौथा कारण यह है कि छात्रों को लिखने का अभ्यास नहीं कराया जाता। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। कुछ छात्रों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे शिरोरेखा के बिना ही अक्षर लिखते हैं। देवनागरी लिपि का कोई भी अक्षर शिरोरेखा विहीन नहीं होता, अतः सभी अक्षरों के ऊपर रेखा अवश्य खींचनी चाहिए। कुछ छात्रों को लिपि का ठीक से ज्ञान नहीं होता, और वे अक्षरों की रचना में ही त्रुटि कर जाते हैं। ऐसी त्रुटियाँ श, स, रि, ज्ञ, झ, भ वर्णों को लिखने में प्रायः हो जाती हैं। मात्राओं के मिलाने में भी कुछ छात्र त्रुटियां करते हैं। रु, रू, क्रम, कृमि, कर्म आदि को लिखने में मात्रा संबंधी एवं संयुक्ताक्षर संबंधी भूल हो जाती है। छात्रों को इनके शुद्ध रूप का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। कुछ छात्र अक्षरों और शब्दों का बहुत घना कर देते हैं, और अक्षरों तथा शब्दों के बीच में उचित स्थान नहीं देते। इस कारण से भी लेख बद्धा हो जाता है। कुछ छात्र अक्षरों को बड़ा छोटा कर देते हैं। जिससे एक पंक्ति में लिखे गए बड़े छोटे अक्षर भद्दे लगते हैं। कुछ छात्र सीधी पंक्ति में भी नहीं लिख पाते, जिससे लेख अच्छा नहीं हो पाता। लेख में विरामों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। विरामहीन लेख पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं और लेखन का उद्देश्य तो यही है कि दूसरे उसे चाव से पढ़ें। लेखन में गति का भी महत्व है। यदि अक्षरों को बनाने में बहुत समय लगता है तो चाहे अक्षर अच्छे ही क्यों ना बने, छात्र को भविष्य में अधिक लाभ नहीं हो सकता। अतः छात्रों को शीघ्र एवं सुंदर लेखन अभ्यास कराना चाहिए। यह अभ्यास अनुलिपि, प्रतिलिपि एवं श्रुतलेख द्वारा कराया जा सकता है। नीचे संक्षेप में इस पर विचार किया जा रहा है। अनुलिपि, लिखने का अभ्यास कराने के लिए अनुलिपि अच्छा साधन है। अनुलिपि की कॉपियाँ अलग से मिलती हैं। इन कॉपियों पर ऊपर पंक्ति में सुडौल एवं बड़े बड़े अक्षरों आकार के अक्षर मुद्रित रहते हैं। नीचे की पंक्तियाँ रिक्त होती हैं। बालक नीचे की रिक्त पंक्तियों में ऊपर की पंक्ति की नकल करते हैं और मुद्रित अक्षरों को ही की भांति सुंदर एवं सुडौल अक्षर बनाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय पूर्व प्रारंभिक विद्यालयों में हिंदी भाषा के शिक्षण में इस प्रकार की कॉपियों का पर्याप्त चलन था, किंतु अब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रारंभिक विद्यालयों में यदि छात्र देवनागरी लिपि को अच्छी तरह से लिखना सीख जाए तो बाद में अनुलिपि की आवश्यकता नहीं है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में कक्षा 6 में जब संस्कृत प्रारंभ की जाए तो संस्कृत के छपे हुए वाक्यों से युक्त कॉपियों का प्रयोग करना आवश्यक समझ पड़ता है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि के लिए अलग से विशेष पुस्तिकाएं नहीं होती। किसी भी पुस्तिका पर छात्र नियमित रूप से किसी पुस्तक या पत्रिका के किसी निर्दिष्ट अंश की प्रतिलिपि करते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों में पहले प्रतिलिपि पर बहुत बल दिया जाता था और छात्र को यह निर्देश दिया जाता था कि प्रतिदिन वह अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य किसी अन्य पुस्तक के कुछ अंश की प्रतिलिपि करें। भाषा का शिक्षक दूसरे दिन नियमित रूप से इन प्रतिलिपियों को देखता था। अब इस क्षेत्र में भी कुछ शिथिलता आ गई है। संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, अतः कम से कम कक्षा 6 तथा कक्षा 7 में संस्कृत अंश की प्रतिलिपि अवश्य कराई जाए, जिससे छात्र सुंदर एवं सुडौल अक्षर रचना के साथ साथ शुद्ध भी लिख सकें। प्रतिलिपि में इस बात का छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरों की बनावट एवं 2 अक्षरों तथा 2 शब्दों के बीच की दूरी उचित हो, साथ ही अक्षरों के आकार का भी ध्यान रखा जाए। शिरोरेखा लुप्त होनी चाहिए। जिस पृष्ठ पर प्रतिलिपि की जाए उस पृष्ठ पर बाईं ओर हाशिया छोड़ देना चाहिए तथा पृष्ठ के ऊपर एवं नीचे भी कुछ स्थान छोड़ देना चाहिए। पृष्ठ पर लिखित एवं अलिखित स्थानों का बड़ा महत्व है। पृष्ठ का लगभग 1/6 भाग अलिखित अवश्य छूटना चाहिए, अन्यथा लिखावट अच्छी नहीं लगती। प्रतिलिपि में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए तथा 2 पंक्तियों के बीच में 1 पंक्ति का स्थान रिक्त छोड़ देना चाहिए। अक्षर सीधे लिखे जाने चाहिए। श्रुतलेख, लेखन के अभ्यास के लिए श्रुतलेख भी अच्छा साधन है। श्रुतलेख से सुंदर लिखने का तो अभ्यास होता ही है, साथ में शीघ्रता पूर्वक लिखने का अभ्यास भी होता है। श्रुतलेख का एक लाभ और है, इससे छात्रों में शुद्ध लिखने की आदत पड़ती है। श्रुतलेख द्वारा अध्यापक छात्र के लेखन का परीक्षण भी कर सकता है। वह यह देख सकता है कि अमुक छात्र ने लिखने में कितनी सुंदरता, सुडौलता, कितनी शीघ्रता, कितनी शुद्धता एवं कितनी एकाग्रचितता का परिचय दिया है। श्रुतलेख का अभ्यास छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में तो दिया ही जाता है, माध्यमिक कक्षाओं में विशेषकर कक्षा 6 तथा 7 में संस्कृत भाषा के अध्यापन में भी इसे अवश्य प्रोत्साहन मिलना चाहिए। संस्कृत भाषा की अपनी विशेषताएं हैं। इसकी विभक्तियां, हलंत, अनुस्वार एवं विसर्ग कभी कभी छात्रों को परेशानी में डालते हैं। छात्र इनमें त्रुटियां ना करें, इसके लिए श्रुतलेख का अभ्यास डालना चाहिए। श्रुतलेख गद्य खंड या श्लोक का हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि श्रुतलेख पाठ्य पुस्तक से ही बोला जाए। हाँ, गद्य खंड या पद्य खंड छात्रों के स्तर का अवश्य होना चाहिए। फिर वह अंश चाहे किसी पुस्तक का हो या किसी पत्रिका से लिया गया हो। श्रुतलेख के अंश को बोलने के पहले छात्रों को ठीक से बैठने, कलम पकड़ने तथा लिखने के ढंग के विषय में आवश्यक निर्देश देने चाहिए। श्रुतलेख के अंश को बोलते समय अध्यापक को अपने बोलने की गति का ध्यान रखना चाहिए। वह यह भी देख ले कि बालक उसके वाचन को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। यदि बालकों का ध्यान केंद्रित ना हो तो उन्हें आवश्यक निर्देश देने चाहिए। सर्वप्रथम अध्यापक को चाहिए कि वह संपूर्ण अंश को एक बार पढ़कर कक्षा को सुना दे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा अंश पढ़े। वह थोड़ा थोड़ा अंश सार्थक अंश हो जाएगा एवं इसमें पदभंग ना हो। अंत में पुनः संपूर्ण अंश को पढ़कर सुना दिया जाए, जिससे छात्र अपने लेखन को भी दोहरा लें। अध्यापक को बोलते समय अपने उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो, पदों एवं वाक्यों का उच्चारण भी उचित रीति से किया जाए। बीच बीच में रुक रुक कर ना बोला जाए और बीच में पदों या वाक्यों की आवृत्ति ना की जाए। विचारों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। श्रुतलेख का संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। संशोधन की विधि पर एक अध्याय में अलग से विचार किया गया है। जब छात्रों को अपनी अशुद्धि का पता लग जाए तो उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि अशुद्ध शब्दों के रूप को दो बार अपनी प्रतिलिपि की या श्रुतलेख की कॉपी पर लिखें, जिससे उन्हें शब्दों के शुद्ध रूप को लिखने का अभ्यास हो जाए। संस्कृत शिक्षण में श्रुतलेख का अत्यधिक महत्व है, अतः इसके शिक्षण क्रम पर विचार कर लेना आवश्यक है। श्रुतलेख के शिक्षण क्रम का संकेत दिया जा रहा है। श्रुतलेख का शिक्षण क्रम: प्रथम, सामान्य प्रारंभिक बातें; द्वितीय, उद्देश्य; तृतीय, सहायक सामग्री; चतुर्थ, पूर्व ज्ञान; पंचम, प्रस्तावना। श्रुतलेख की प्रस्तावना में प्रारंभ में कुछ आवश्यक निर्देश होंगे, यथा कॉपी निकालना, ध्यान से सुनना, कलम ठीक करना, शांत रहना आदि। षष्ठ, विषयोपस्थापन। क, संपूर्ण अन्विति का पाठ। ख, अन्विति की इकाइयों का स्नेह स्नेह पाठ छात्रों द्वारा लिखना। ग, पुनः संपूर्ण अन्विति का पाठ तथा छात्रों द्वारा लेखन को दोहराना। घ, संशोधन। वा, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप लेखन। सप्तम, गृह कार्य। श्रुतलेख पाठ योजना: प्रथम, विद्यालय का नाम, दिनांक, अध्यापक का नाम, कक्षा 6, वर्ग 2, कालांश षष्ठ, अवधि 40 मिनट, विषय संस्कृत श्रुतलेख। सामान्य उद्देश्य: प्रथम, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत की ध्वनियों को पहचान सकें तथा उनमें भेद कर सकें। द्वितीय, उन्हें सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। तृतीय, उन्हें संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखने का अभ्यास कराना। चतुर्थ, लेखन में की गई त्रुटियों को पहचानने की क्षमता प्रदान करना। पंचम, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों के रूपों को समझ सकें एवं उनकी वर्तनी का स्मरण रख सकें। सहायक सामग्री: लपेट श्याम पट पर लिखित श्रुतलेख की संपूर्ण सामग्री। पूर्व ज्ञान: छात्र संस्कृत शब्दों को मातृभाषा में पढ़ते रहे हैं, श्लोकों की सामाजिक जीवन में सुनते रहे हैं और संस्कृत के वाक्यों से उनका परिचय हो गया है। वे देवनागरी लिपि पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तावना: छात्रों, आज श्रुतलेख लिखा जाएगा, अपनी पुस्तिकाएं निकालो, कलम से लिखना है, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। मैं अनुच्छेद को बोलूंगा और तुम लोग ध्यान से शांतिपूर्वक सुनोगे। जब लिखने को कहूंगा तब लिखोगे। विषयोपस्थापन: अध्यापक निम्नलिखित अनुच्छेद का सस्वर स्पष्टतया वाचन करेगा। चीनः अस्ति एक विशालतमो देशः, तस्य जनसंख्यापि महती अस्ति, तस्य साम्यवादी दिशाशासनेन स्वार्थलिप्सया जनतासु महंत अत्याचारा विहितः। येन तासु महान असंतोषः व्याप्तः अभवत् तस्य निराकरणाय स्वजनतायाः ध्यानमन्त्रया प्रेषणीयम् आवश्यकमासीत्। एतेव तेन भारतोपरि आक्रमणं कृतम्। इदयन्तु पुराकालतः एवं सम्पूर्णं विश्वं जानाति यत् चीनयः यदैव अन्यदेशेभ्यः बलवत्तरः जातः तदैव दुर्बलानि राष्ट्राणि आक्रमण्य स्वदेशस्य सीमानम् अवर्धयन्। अस्य प्रमाणम् अन्यत्र नैव गवेषणीयम्। इतः कतिपयवर्षपूर्वम् एव त्रिविष्टप्रदेशः चीनेन बलात् विजितः। अन्येपि स्वप्रतिवेशिनो देशः हिन्द सिया ब्रह्मदेश श्याम अफगानिस्थानद्वयो तेन आतंकिता सन्ति। चीनः बलवान् शत्रुः अस्ति। अतः अस्माभिः सैनिक क्षेत्रेषु सैन्यसज्जा कर्तव्या एव। यतः तथैव तस्य वास्तवो अवरोधः भविष्यति। तत्पश्चात् उपर्युक्त अनुच्छेद को अनेक इकाइयों में बांटकर अध्यापक एक एक इकाई को धीरे धीरे बोलेगा। उपयुक्त अनुच्छेद को निम्नलिखित ढंग से इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। चीनः अस्ति एकः विशालतमो देशः। तस्य जनसंख्यापि महती अस्ति। तस्य साम्यवादी शासनेन स्वार्थलिप्सया जनतासु महान अत्याचारः विहितः। येन तासु महान असंतोषः व्याप्तः अभवत् तस्य निराकरणाय स्वजनतायाः ध्यानमन्त्रय प्रेषणीयम् आवश्यकमासीत्। एतेव तेन भारतोपरि आक्रमणं कृतम्। इदं तु पुराकालतः एव सम्पूर्ण विश्वं जानाति यत् चीनयः यदैव अन्यदेशेभ्यः बलवत्तरः जातः तदैव दुर्बलानि राष्ट्राणि आक्रम्य स्वदेशस्य सीमानम् अवर्धयन्। अस्य प्रमाणम् अन्यत्र नैव गवेषणीयम्। इतः कतिपयवर्षपूर्वम् एवं त्रिविष्टप्रदेशः चीनेन बलात् विजितः। अन्येपि स्वप्रतिवेशिनो देशः हिन्देशिया ब्रह्मदेश श्याम अफगानिस्थानादयो तेन आतंकिताः सन्ति। चीनः बलवान् शत्रुः अस्ति। अतः अस्माभिः सैनिक क्षेत्रेषु सैन्यसज्जा कर्तव्य एव। यतः तथैव तस्य वास्तवो अवरोधः भविष्यति। छात्रों द्वारा लेखन। ज्यों ज्यों अध्यापक बोलता जाएगा छात्र लिखते जाएंगे। पुनः वाचन। पुनः संपूर्ण अनुच्छेद का अध्यापक विरामों का ध्यान रखते हुए पाठ करेगा, जिससे छात्र लेखन को दोहरा लें तथा विराम लगा लें। संशोधन। छात्र आपस में एक दूसरे की कॉपी बदल लेंगे और प्राप्त कॉपी पर संशोधन करेंगे। फिर छात्र कॉपी बदलकर अपनी अपनी कॉपी ले लेंगे। अध्यापक लपेट श्यामपट को अब टांग देगा, जिसमें संपूर्ण अनुच्छेद लिखा होगा। छात्र अपनी त्रुटियों को पुनः देखेंगे। जो शब्द अशुद्ध लिखे गए हैं उनका शुद्ध रूप कम से कम 5 बार छात्र अपनी कॉपी पर लिखेंगे। गृह कार्य। उपर्युक्त अनुच्छेद की सुंदर ढंग से घर पर प्रतिलिपि करो, अर्थात सुंदर हस्तलेख में इसे पुनः लिखो। श्रुतलेख पाठ योजना द्वितीय। अध्यापक का नाम, दिनांक, अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कला, कालांशः चतुर्थ, अवधि 40 मिनट, विषय संस्कृत श्रुतलेख, सामान्य उद्देश्य। प्रथम, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत की ध्वनियों को पहचान सकें तथा उनमें भेद कर सकें। द्वितीय, उन्हें सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करना। तृतीय, उन्हें संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखने का अभ्यास कराना। चतुर्थ, लेखन में की गई त्रुटियों को पहचानने की क्षमता प्रदान करना। पंचम, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों के रूपों को समझ सकें एवं उनकी वर्तनी का स्मरण कर रख सकें। सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट पर लिखित श्रुतलेख की संपूर्ण सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र मातृभाषा के कालांशों में श्रुतलेख लिखने के अभ्यस्त हैं, वे संस्कृत के भी श्रुतलेख पिछली कक्षा में लिखते रहे हैं। प्रस्तावना, आज हम लोग श्रुतलेख लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनो, जब लिखने को कहूँगा तब लिखोगे। विषयोपस्थापन, अध्यापक निम्नलिखित श्लोकों का सस्वर वाचन करेगा। य एनम वेति हंतारम, यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो, या नायम हन्ति न हन्यते, न जायते म्रियते वा कदाचि, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजौ नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनशिनम् नित्यम् य एनम् जमव्ययम्, कथम स पुरुषा पार्थकम् घात्यति हन्तीकम्, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रहान्ति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि, संयाति नवानी देही। तत्पश्चात उपर्युक्त श्लोकों को अनेक इकाइयों में बांटकर अध्यापक एक एक इकाई को धीरे धीरे बोलेगा। उपर्युक्त श्लोकों को निम्नलिखित ढंग से इकाइयों में विभक्त किया जा रहा है। य एनम वेत्ति हंतारम, यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानी तो, नायम हन्ति हन्यते, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, भूत्वा भविता व न भूयम्, अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनम् नित्यम् य एनमजम् व्ययम्, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रहान्ति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। छात्रों द्वारा लेखन, ज्यों ज्यों अध्यापक बोलता जाएगा छात्र लिखते जाएंगे। पुनः वाचन, पुनः संपूर्ण पाठ का अध्यापक विरामों का ध्यान रखते हुए वाचन करेगा, जिससे छात्र लेखन को दोहरा लें और विराम लगा लें। संशोधन, अध्यापक आपस में एक दूसरे की कॉपी बदल लें, प्राप्त कॉपी का संशोधन करें, पुनः अपनी अपनी कॉपी वापस ले लें। अध्यापक अब लपेट श्यामपट को टांग देगा, जिसपे सब श्लोक लिखे होंगे। जो शब्द अशुद्ध लिखे गए हों, उनका शब्द रूप कम से कम 5 बार अपनी कॉपी पर छात्र अवश्य लिखेंगे। गृह कार्य, उपर्युक्त श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में घर पर पुनः लिखो, अर्थात इनकी प्रतिलिपि करो।